اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیارہویں تراویح، تیرہویں پارے کے نصف سے چودھویں پارے کے ثلاثت تک کی تلاوت۔ سورہ الرعد کا سلسلہ قائم ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ اپنے عہد کی پاسداری، قول و قرار پورا کرتے ہیں، اللہ نے جن رشتوں کو، جن علاقوں کو، احکامات کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کو باقی رکھتے ہیں، حکم کی تعمیل کرتے رہتے ہیں، خدا کا خوف ڈر جن کے دل میں ہر وقت لگا رہتا ہے، اپنی مشکلات کو صبر سے حل کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اور اپنا مال غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے مخالفین کی بدسلوکی کی برائی کا جواب احسان نیکی سے لوٹاتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی زندگی کے بہترین ٹھکانے اور درجے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، جہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی انتظار کر رہی ہے۔ لوگ نہیں جانتے یہ کتاب قرآن مجید کیا اثرات، آیات و بینات کی کتاب ہے۔ اس کی تاثیر، اثر، قوت، فیض ایسی ہے کہ اللہ چاہے تو اس کے اثر سے زمین پر کھڑے ہوئے پہاڑ چلنے لگیں، زمین کے اندر قبروں کے مردے زندہ ہو کر لوگوں سے باتیں کریں۔ کیا وہ یہ منظر دیکھنے کے خواہش مند ہیں؟ تب اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار اور جواب دہ ہوگا۔ اصل فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا۔ اللہ کے پاس لوح محفوظ ام الکتاب میں سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم، چودھویں سورت قرآن کی شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ کی ام الکتاب سے نازل ہو رہا ہے، جو لوگوں کو جہالت، کفر، شرک کی تاریکی سے نور ایمان کی روشنی ملاتی ہے۔ یہ زیب و زینت کی خوشنما، دل فریب مناظر دنیا کے انسانوں کی آرام طلب فطرت کو اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی من پسند کی خواہش، نفس لذت عیش کی زندگی گزارے، اس میں کوئی روک ٹوک کسی کی نہیں ہو، یہ ٹیڑھا راستہ ہوگا۔ اس سے بچ نکلنے کے لیے جھوٹے جواز، طرح طرح کے ہیلے، بہانے، عذر، فتوے، فیصلے، تسلیاں حاصل کر کے دل کو دھوکہ فریب دیتے رہتے ہیں۔ نماز، روزہ، خدا کی بندگی، اطاعت سے کتراتے رہتے ہیں۔ پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا۔ بنی اسرائیل کی تو فرد جرم کی ایک فہرست تیار کر کے قرآن نے سب کے حالات سنائے ہیں، ان کا انجام بھی تم نے سن لیا۔ یہ بات صرف ایک نقطے کی تھی، ان کو اتنی سی بات مان لینی تھی کہ اپنے زبان سے، دل کے یقین سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا چاہیے تھا، مگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے۔ الہ کو وہ ضرور مانتے تھے، کہتے تھے کہ خدا ہے، خدا مانتے تھے، لیکن خدا کے قائم مقام اور خداؤں پر ان کا اصرار تھا، قرآن کا اصرار تھا کہ پہلے نفی کرو خدا کی، کہ خدا کوئی نہیں ہے، لا الہ، مگر صرف ایک خدا ہے، الا اللہ۔ لوگوں، تم نہیں جانتے کہ اس کلمہ طیبہ میں کیا خیر اور کیا برکت ہے، اس کی اہمیت اور ضرورت، دین کی بنیاد اس پر قائم ہے۔ ایسی بنیاد تم مثال سے سمجھو کہ وہ ایک چھوٹا سا پودا ہے دین ایمان کا، جو متقی لوگوں کے دل میں پھلتا پھولتا ہوا ایک بڑا تناور درخت بن جاتا ہے، ایسا گھنا درخت جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں تک اونچی پھیلی ہوئی ہوں، جس کی جڑیں زمین کے اندر دور دور تک چلی گئی ہوں، اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں دل کا سکون، دنیا کی راحت، آخرت کی بہترین زندگی کا خواب، مزے، نیند کا آرام، مسافر، سب کچھ حیات کو ملے۔ اس کے نیک ثمرات مومنوں کے اوپر جھوم جھوم کر لدے پھدے لٹک رہے ہوں، اور اللہ کے نیک متقی بندے اپنے ہاتھوں سے، اپنے عمل سے ان کو 1 سے 10 گنا کر کے لوٹ رہے ہوں، حاصل کر رہے ہوں۔ اسی کلمہ طیبہ کے ایمان و یقین کی بنیاد، اسی پر زندگی کا سارا دار و مدار ہے، اور اسی میں لوگوں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ اس نے ابتدائی عمر ہی سے اس کلمہ طیبہ کو پا لیا تھا، ایسے گھر میں جنم لیا جہاں بہت سے الہ روزانہ پتھروں سے تراشے جاتے تھے۔ ابراہیم نہ تو ان کو بازار میں لے جا کر فروخت بھی کیا کرتا تھا، کہتا تھا لوگوں، اپنے اپنے خداؤں کو میرے ٹوکرے سے چن کر اٹھا لو، تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، گھروں کی زینت کے لیے لے جا کر رکھ لو۔ ابراہیم تو صرف ایک خدا کو جانتا پہچانتا اور چاہتا تھا، اور ان سارے خداؤں کو کوڑیوں کے دام بیچ کر روزانہ آیا کرتا تھا۔ ابراہیم کا دین و ایمان اللہ کو پسند تھا۔ ابراہیم روئے زمین پر وہ پہلا انسان تھا جس کو خدا کی معرفت حاصل تھی، وہ کلمہ طیبہ کا شہدائی، اس کا ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس پر زندگی گزارنے والا تھا۔ اس نے کلمہ طیبہ کے مان لینے کے بعد کیا کیا مصائبات اور مشکلات کا سامنا نہیں کیا، قرآن نے وہ سب بیان کیا ہے۔ بالآخر ابراہیم خدا کی معرفت، خدا کی پہچان میں کامیاب ہوا۔ ابراہیم کو خدا نے آزمایا کہ وہ کس قدر اپنے قول و ایمان کا سچا اور پکا ہے۔ ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اترا۔ اللہ نے اس کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنایا۔ इब्राहिम से अल्लाह ने अपना घर मक्के में तामीर करवाया। इब्राहिम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया। इब्राहिम ने अपनी औलाद से यानी बेटे इसहाक से और इसहाक के बेटे याकूब से वादा लिया कि वो इस कलमे तैयबा पर कायम रहेंगे, खुदा के सिवा किसी और माबूद की परस्तिश नहीं करेंगे। इस वादे बनी इसराइल की इनकी नस्ल वादा खिलाफी नहीं करेगी। आज वो दिन आ गया है, इस्माइल की औलाद में एक नबी आया और इस कलमे तैयबा को उठा लाया, इस अहद की तजदीद का बेड़ा उठाया और मक्का की वादी में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया और कहा, लोगों अल्लाह एक है, वाहिद है, इसी की इबादत और बंदगी करो। इसके बाद दूसरी सूरत अलहिजर शुरू होती है, अलिफ लाम रा से शुरू होती है। इसमें मुजाहिर कुदरत के एक एक करिश्मे को बयान करके खुदा की वहदानियत की दलील और सबूत पेश किए जा रहे हैं। फिर भी ये ना मानने वाले जहन में इसकी बातों पर यकीन नहीं रखते। इसको दीवाना और मजनून की बातें कहते हैं, दावत इस्लाम पर तोहमत लगाते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। कुरान ने शुरू ही में आदम और शैतान का किस्सा सुनाकर बता दिया कि दुनिया में सिर्फ दो कुव्वतें काम करती रहती हैं, आदमी का तर्ज अमल इंसानियत, शराफत, इताअत, खुदावंदी, गलती भूल पर अल्लाह से माफ़ी तलब करना, आजिज़ी करना है। दूसरा तरीक़ा खुदा की नाफरमानी, गुरूर, तकबर, गलती, नादानी पर इसरार करना, इसके लिए जवाज, हीले, दलाइल से बहस करना है और धमकी देना। इन दो तरीक़ों पर उनके आमाल व अफ़ाल अपना अपना तर्ज अमल इख्तियार करते रहते हैं और जाहिर है कि इन दो मुख्तलिफ तरीक़ों के अंजाम आखिरत में बड़े होंगे, अपने अपने कैफर व किरदार को पहुँचेंगे। जो लोग सिरात मुस्तकीम आदमियत के रास्ते पर चलेंगे, अल्लाह ने इनकी मगफरत और बख्शिश का वादा फरमाया है। अल्लाह ने मुसलमानों की मगफरत और बख्शिश के लिए एक नुस्खा शफा ऐसा अता किया कि सारे कुरान का वो खुलासा और निचोड़ है। कुरान की आयत सब मसानी जो फातिहा अल किताब में शुरू कुरान का दिबाचा बनाई गई, जिसमें अल्लाह ने खुद अपना तारुफ लोगों से करवाया और लोगों को खुदा से मांगने का तरीक़ा और सलीका सिखाया, यही वो आयत सब मसानी हैं जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में हिजरत से पहले आकर सुनाते थे और फरमाया था कि हर रकत नमाज में सबसे पहले इन सात आयात को पढ़ा करें। और यही आयात सबा मसानी अल्लाह का हबीब खुदा के दीदार के लिए जब उसकी जनाब में पहुंचा तो अपनी उम्मत की तरफ से बतौर सिपासनामा इन आयात की तलावत की। यही दुआ बड़ी मुस्तजाब और मकबूल हुई। खुदा ने इस सिपासनामे को मुसलमानों को लौटा दिया और हुक्म दिया कि मेरा बंदा अगर हर रोज़ दिन के पाँच अवकात में अपनी नमाजों में इन आयात को खड़े होकर पढ़ता रहेगा और इसमें से दोजख की आग को दूर कर दूंगा, इसके लिए अपनी रहमत और मगफरत के दरवाज़े खोल दूंगा। यह है सूरह फातिहा की तफसीर। यह सूरत कब्रों के मुर्दों की शफात और बख्शिश करने वाली है। यह सूरत फातिहा तुम्हारी नजर व नियाज, मन्नत, मुराद पूरी करने वाली है। यह सूरत फातिहा तुम्हारी निजात के लिए नुस्खा शफा है। अल्लाह ने उन कौमों का एक सरसरी जायजा इस सूरत के आखिर में सुनाया जिन पर खुदा का गज़ब और गुस्सा इनकी हलाकत और बर्बादी का बास बना। हज़रत नूह का वाक़या, हज़रत लूत का किस्सा कि एक ही घर के अंदर पैगंबर की बीवी भी मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ अकीदा रखने वाली होती है। बीवी से ज़्यादा करीब मर्द की कौन रफ़ीक होगी, मगर ख्याल व फ़िक्र व अकीदा की आज़ादी किसी को राह रास्त पर लाती है, किसी को गुमराह कर देती है। ये सबका नसीब अलग अलग है, सबका मुकद्दर है। इसके बाद कौम हिजर का किस्सा सुनाया जिसके नाम से ये सूरत मंसूब है। बड़े माहिर इंजीनियर तामीरात मकानात, पहाड़ों का सीना चीर चीर कर बड़े बड़े सुतून तराश करके इमारात, महल्लात, मकानात तामीर करते थे कि ऐसे खूबसूरत पायदार मकानात, मगर इनमें रहने वाले इस कदर बोधे और कमज़ोर जिनको खुद ही अपनी तामीर तखरीब की कोई ख़बर नहीं। मकानात बाकी रह जाएंगे मगर मकीन बाकी ना होंगे। इनके महल्लात आलीशान मकान, माल दौलत, सरवत, खुशहाली इनके कोई काम ना आई। जब खुदा का अजाब जलजले की सूरत में आया वो अपने मकानों की छत के नीचे दबकर हलाक हो गए। खुदा के नाफरमान सरकश कुफ्र व शिर्क की ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह के हबीब उन काफिरों के हालात और सरकशी पर दिल तंग ना करें, गमगीन ना हों, अल्लाह से राबता इस्तवार रखें, इसकी इबादत करते रहें। लोगों, क़्यामत का दिन मुकर्रर है, क़्यामत का वादा अल्लाह ने कर रखा है। इस दिन से डरो जिस दिन सबका हिसाब और फैसला होने का दिन मुकर्रर है। ये गैब की बातें हैं, कुरान गैब का इल्म तुम्हें सुनाता रहता है। तुमको खुद अपने मुताल्लिक गैब की खबर नहीं है। तुम पैदाइश से पहले कहाँ थे, कहाँ से अदम वजूद से तुम वजूद में आ गए। कभी तुमने अपनी हकीकत नुतफ़े की खबर भी ली है, अपनी पैदाइश और वजूद की खबर नहीं। खुदा के वजूद के बारे में तकरार करने निकले हो एक गंदा पानी का हकीर कतरा और खुदा के बारे में तड़ाक पड़ाक बातें करे, इंसान अगर खुदा के इनामात एहसानात का शुमार करना चाहे तो ज़िंदगी सारी इसकी कितनी शुमार हो पूरी ना कर सके। खुदा की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, ज़रा दुनिया में चल फिर कर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। आज इनका नामो निशान तक मिट गया, जिन लोगों ने अल्लाह के दीन के लिए इब्तिदान इस्लाम में मुश्किलात बर्दाश्त की, अपना घर बार वतन छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत मदीना की, इनके दर्जात अल्लाह के पास मुकर्रर कर दिए गए हैं और आखिरत का सवाब बदरजा अल्लाह के पास मिलेगा, इसलिए कि उन्होंने मुसीबतों में सब्र किया, तहम्मुल बर्दाश्त इख्तियार किया, अल्लाह पर भरोसा किया। अल्लाह इनका अजर ज़रूर देने वाला है। लोगों, दीन की बातें रसूलुल्लाह से सीखो। अगर तुम्हें मालूमात कम हैं तो अहले ज़िक्र से अहलुल्लाह से मालूमात हासिल करो, तुमको दीन के मुतालिक बहुत कुछ मालूम होगा। कुरान के मजामीन, कुरान की आयात बयनात तुम्हारे सामने हर बात साफ साफ बयान करती हैं। इनको पढ़ो, इन पर गौर करो, फ़िक्र करो, नसीहत हिदायत की बहुत सी बातें तुमको मालूम हो जाएंगी। लोगों के बारे में अजीब अकायद पेश आते रहते हैं। अगर इनके घर बेटा पैदा होता है तो खुश हो जाते हैं, अगर बेटी पैदा होती है तो इनके मुँह फूल जाते हैं, आज़ुर्दा हो जाते हैं। लोगों से नौमौलूद की खबर छुपाते फिरते हैं, शर्म आती है। बेटी दूसरे को ब्याह करने और किसी गैर को अपना दामाद बनाने में जहालत गुमराही, देखो कि बेटी को जिंदा दरगोर करते मिट्टी में दफन करके चले आते हैं। खुदा पर भरोसा ज़रा नहीं करते। खुदा तो इनको बेटे बेटियां अता करने वाला है, इनको रिस्क अता करने वाला है। अल्लाह ने इंसानों के लिए हैवानात को एक दूसरे की ज़रूरत नफ़ा और गज़ा के लिए पैदा किया है। जानवरों का दूध बच्चों की परवरिश के लिए, इनका गोश्त खाने के लिए हलाल किया है। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, कैसी अकल मारी गई है। इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, ज़रा सी मक्खी को तो देखो इसकी अकल ही कितनी है। शहद की मक्खी को किसने अकल दी, किसने समझाया कि दरख्तों की ऊंची ऊंची शाखों पर अपने घर बनाए, छत्ता लगाए, पहाड़ की बुलंद चोटियों पर अपना छत्ता सजाए, कि इंसान की दुश्मनी से दस्तबर से महफूज रहे। इसका ख़ानदानी निज़ाम तो देखो, इसकी अकल व समझ कितनी, कैसा मरबूत इंतज़ाम है। ख़ानदान का रानी है, अंडे बच्चे देने का काम इसके ज़िम्मे है, इसकी खादमाएँ नौकरानियाँ हैं जो बच्चों की हिफाजत परवरिश परदाख्त करती रहती हैं। इनमें मादा मक्खी सिवाय रानी के कोई नहीं, सबकी जिन्स अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाई है। खादिमाएँ खिदमत गुजार मक्खियाँ, इनकी कोई जिनसी ख्वाहिश रगबत नहीं, ना नर होती हैं ना मादा, बीच बीच की जिन्स अलग और नर मक्खियाँ अलग, जिनके ज़िम्मे बाहर का काम मेहनत का लगाया गया है। रोज़ सुबह सवेरे बागों जंगलों से फलों का रस चूस चूस कर शहद जमा करती रहती हैं। इनके ज़िम्मे ये काम दिन रात लगा रहता है। इनकी ग़िज़ा की ज़रूरत भूख प्यास वो इसी शहद से पूरा करती हैं जो इनके पेट के अंदर जमा रहता है। बकदरे ज़रूरत इस्तेमाल करती हैं, बाकी बचने वाला शहद छत्ते में जमा कर देती हैं। सबका एक ही काम है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो बच जाता है वो उनका माल नहीं है, वो छत्ते की मिल्कियत है। सबके काम आएगा, सबकी ज़रूरत पूरी होगी, ये तो मक्खी की अकल और सोच और समझ है। इंसान, तू जो कुछ कमाता है सारा माल अपने लिए जमा कर लेता है, ज़रूरत से ज़्यादा अल्लाह की राह में बहन भाइयों पर खर्च करना नहीं चाहता, कहता है इसका माल है, इसने कमाया, इसने जमा किया है। क्या इंसान शहद की मक्खी से गया गुजरा हो गया है जो ऐसा ख्याल करता है, शहद की मक्खी से अकल सीखे। खुदा अपनी हिकमत की मिसालें किस तरह देता रहता है। इंसान अपनी अक्ल व फहम को ज़रा दौड़ा ले तो इस कुदरत के मुजाहरों में बहुत सी निशानियाँ और रंग के तमाशे नज़र आएंगे। इनसे वो सबक सीखे, अपनी ज़िंदगी को खुदा के हुक्म के मुताबिक ढाल ले। खुदा ने आँख नाक कान अकल समझ हर चीज़ सेहतमंद तंदुरुस्ती दे रखी है। अकल से सोचे और समझे और फिक्र करे। रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी इनके सामने नमूना बनी रखी है। कुरान हिदायत के लिए खुली हुई किताब है। लोगों, गफलत बहुत हो गई, दुनिया धोखा है, ज़िंदगी मुख्तसर है, क़यामत करीब है, क़यामत ज़रूर आएगी। अपना अपना हिसाब पूरा करो, एतदाल तवाज़ुन की ज़िंदगी इख्तियार करो। इसराफ खुदा को पसंद नहीं, अदल व इंसाफ बराबर रखो। अल्लाह एहसान करने का हुक्म देता है, अदल एहसान से मामलात को खुशगवार बनाओ। खैरात सदका ज़्यादा निकालो, इससे मग़फ़रत के सामान पैदा होते हैं। लोगों, बात बात पर अल्लाह की झूठी कस्में मत खाओ, बदअहदी करोगे तो तुम पर गुनाह होगा। बदअहदी की सज़ा से बचने के लिए कसम का कफ़ारा वाजिब है। जो लोग अपना अहद कसम खाने के बाद तोड़ डालते हैं, इनकी मिसाल इस औरत की है जो दिन रात सूत काट काट कर धागे का गोला तैयार करती है और फिर उसको गुच्छे गुच्छे बनाकर तार तार कर देती है। कसम तोड़कर बाद अहदे की ऐसी मिसाल तुम पसंद करोगे कि सारी मेहनत ज़ाय कर दी। ये मिसाल मकड़ी के घर के बोधे घर की मिसाल है। लोगों, जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो सबसे पहले शैतान से पनाह मांगो, खुदा की पनाह में आ जाओ कि तुम्हारे ख्यालात और वसवसों से तुम्हें निजात हासिल हो। کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نام کی برکت و رحمت سے مومنوں کے دلوں کو سکون اور یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اللہ ہی مومنوں کے عقیدے اور اعمال کا نگہبان ہوتا ہے، اگر غلطی سے بھول چوک ہو جائے، گناہ خطا کر بیٹھو تو ضمیر کی آواز ملامت پر نادم ہو جاؤ، خدا سے شرمساری کرو، مغفرت اور توبہ کرو، اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمہارا دین تمہارا عقیدہ دین ابراہیم ہے، دین ابراہیمی ہے، اسی طرح ازل سے ابد تک قائم رہنے والا دین ہے، تمہاری پہچان نماز روزہ خدا کی اطاعت بندگی سے ہے، اللہ نے تمہیں دو نعمتیں دی ہیں صبر اور نماز، ان پر کاربند ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی اور نجات ہوگی۔ 11ویں تراویح کا اختتام۔